أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين وآله الطيبين الطاهرين، أما بعد. السلام علیکم میرے پیارے دوستوں اور بھائیوں، جیسا کہ آپ جانتے ہیں کہ ہم اپنے اس پروگرام میں احکام کے بارے میں وارتالاپ کر رہے ہیں. جیسا کہ ہم نے آپ کو اپنے پچھلے پروگرام میں بتایا، جو ہمارا پروگرام غسل کے احکام سے سمبندھت تھا، ہم نے اس پروگرام میں غسل جنابت کے بارے میں بات چیت کی، اور ہماری بات چیت ہوتے ہوتے یہاں تک پہنچی تھی کہ کوئی انسان کیسے مجنب ہوتا ہے. اسی کے بارے میں ہم اپنی بات چیت کو آگے بڑھائیں گے، لیکن اس سے پہلے ایک بات میں آپ کو بتا دوں کہ ہم نے اپنے پچھلے پروگرام میں یہ بتایا تھا کہ کوئی انسان جب بالغ ہوتا ہے تو اس کی تین نشانیاں ہیں، جس میں سے ایک نشانی یہ ہے کہ لڑکے کے 15 سال ہو گئے ہوں یا لڑکی کے 9 سال ہو گئے ہوں. ہم نے آپ کو یہی بتایا تھا کہ یہاں پر 15 سال اور 9 سال سے ہمارا تاتپریہ چاند کے مہینے ہیں، سورج کے مہینے نہیں ہیں، یا میلادی مہینے اور عیسوی مہینے نہیں ہیں. لیکن اس لیے کہ آپ کو حساب لگانے میں آسانی ہو، ہم یہاں پر آپ کو بتاتے ہیں کہ ایک چاند کے 15 سال عیسوی کے کتنے بنتے ہیں. اگر ہم جوڑیں تو جب چاند کے 15 سال ہوتے ہیں تو عیسوی کے 14 سال 6 مہینے اور 15 دن ہوتے ہیں. یعنی اگر کوئی لڑکا میلادی اور عیسوی سال کے انوسار 14 سال 6 مہینے اور 15 دن کا ہو جائے تو اسلامی شریعت کے انوسار وہ بالغ ہو جاتا ہے. اسی پرکار اگر کوئی لڑکی 8 سال 8 مہینے اور 20 دن میلادی کے ہو جائے، عیسوی کے ہو جائے، تو وہ بالغ ہو جایا کرتی ہے اور اس کے اوپر شریعت کے وہ تمام کار جو واجب اور حرام ہیں لاگو ہو جایا کرتے ہیں. تو یہ تو وہ چیز تھی جو ہم نے اپنے پچھلے پروگرام میں بتایا تھا اور اسی کے آگے بتا دیا تاکہ آپ کو حساب کرنے میں آسانی ہو. اب اس کے آگے کی بحث شروع ہوتی ہے، کوئی انسان مجنب کیسے ہوتا ہے. ہم نے آپ کو بہت سی چیزیں بتائیں کہ انسان مجنب کیسے ہوتا ہے. انہی میں سے کچھ مسئلے آگے ہیں کہ اگر جو ہماری شریعت میں اسلام نے بہت حرام قرار دیا ہے اور کہا ہے کہ اس کو نہیں کرنا چاہیے ایک مسلمان کو، وہ ہے حس میتھون. اگر کوئی انسان استمنا یا حس میتھون کر رہا ہے اور اس کے بعد اس کے منی اور ویر نکل جاتی ہے تو اس کے اوپر غسل واجب ہے. یہ بات دھیان رکھنے والی ہے کہ حس میتھون کو اسلام نے بہت بڑا پاپ قرار دیا ہے اور اس کے اوپر ایشور نے عذاب کا وعدہ کیا ہے، لیکن اگر پھر بھی انسان کرتا ہے تو اس کے اوپر غسل جنابت واجب ہوگا. اور اس کے بعد کی جو بات آتی ہے وہ یہ ہے کہ اگر انسان کوئی اپنی پتنی کے ساتھ سمبھوگ کر رہا ہے، کوئی انسان اپنی پتنی کے ساتھ راتری کریا کر رہا ہے، تو اگر اس کے ختنے کے استھان بھر کا حصہ پتنی میں پرویش کر جائے تو پتی اور پتنی دونوں مجنب ہو جایا کرتے ہیں شریعت کے انوسار، چاہے وہ منی نکلی ہو، ویر نکلی ہو یا نہ نکلی ہو. یعنی یہاں پر ویر نکلنا آدھار نہیں ہے بلکہ پرویش کر جانا ہی آدھار ہے. جیسے ہی پرویش کرے گا دونوں مجنب ہو جائیں گے اور ان دونوں کے اوپر غسل جنابت کرنا واجب ہوگا. یہیں پر ایک مسئلہ اور بھی آتا ہے کہ اگر کوئی انسان کسی جانور کے ساتھ، ایشور نہ کرے، غلط کاریہ کرتا ہے تو اگر اس کی ویر نکل جاتی ہے تو اس کے اوپر غسل جنابت واجب ہے. لیکن اگر یہ کاریہ کرتا ہے اور اس کی ویر نہیں نکلتی ہے تو اس کے لیے بہتر یہ احتیاط یہ ہے کہ غسل جنابت بھی کرے، اور غسل جنابت کرنے کے بعد وہ وضو بھی کرے. جیسے نماز پڑھنا ہے اس کو تو غسل جنابت کے ساتھ ساتھ وضو بھی اس کے لیے کرنا ضروری ہوگا. تو یہ وہ احکام تھے جو اس سے سمبندھت تھے کہ کوئی انسان کیسے مجنب ہوا کرتا ہے. اب اس کے بعد کی بات آتی ہے کہ اگر کوئی انسان مجنب ہو گیا ہے تو وہ شریعت کے انوسار کیا کر سکتا ہے اور کیا نہیں کر سکتا ہے. تو شریعت نے ایک مجنب انسان کے اوپر कुछ कार्य ऐसे हैं जो हराम करार दिए हैं, और कहा है कि ये कार्य इंसान, एक मुजनिब इंसान नहीं कर सकता है, वो इंसान नहीं कर सकता है जिसको, जो जनाबत की अवस्था में है। उनमें से कौन कौन से कार्य हैं? उसमें सबसे पहला कार्य यह है कि इंसान अगर मुजनिब है तो अपने शरीर के किसी भी अंग को कुरान की आयतों, ईश्वर के नामों और एहतियात के अनुसार पैगंबर, मासूमीन, हज़रत फ़ातिमा सलामुल्लाह अलैहा के नामों को नहीं छू सकता है, शरीर के किसी भी अंग से। यहाँ पर हाथ वो नहीं है, तात्पर्य नहीं है कि सिर्फ हाथ से नहीं छू सकता, नहीं, बल्कि शरीर का कोई भी अंग इन चीज़ों से छुला नहीं सकता है, उससे उन चीज़ों को छू नहीं सकता है। और दूसरी बात यह है, जो चीज़ शरीयत ने हराम करार दी है एक मुजनिब के ऊपर, वो ये है कि एक मुजनिब इंसान मस्जिद नबी और मस्जिद हराम, जो मक्के और मदीने में है, उसमें प्रवेश नहीं कर सकता है, चाहे ऐसा हो कि एक द्वार से अंदर प्रवेश करे और दूसरे द्वार से निकल जाए, ना, ये भी नहीं कर सकता है। अगर मुजनिब है तो वो हालत जनाबत की, जनाबत में किसी भी सूरत में उसमें प्रवेश नहीं कर सकता है, और अगर प्रवेश किया है तो उसने हराम कार्य अंजाम दिया है। और उसके बाद एक और बात आती है कि पहली बात तो ये हो गई कि मस्जिद नबी और मस्जिद हराम में प्रवेश नहीं कर सकता है, और उसके अलावा जो दूसरी मस्जिदें हैं, जो संसार में दूसरी मस्जिदें पाई जाती हैं, उनके अंदर एक मुजनिब के लिए ये हराम है कि जनाबत की अवस्था में वो उन मस्जिदों में अपना ठिकाना बनाए या उन मस्जिदों में बैठे, यानी प्रवेश करे और रुक जाए, ये उसके ऊपर हराम है। यानी अगर कोई मुजनिब ऐसा कर रहा है तो उसने हराम कार्य अंजाम दिया है। और उसके बाद अगर इंसान मुजनिब है तो कुरान में कुछ सूरे ऐसे हैं जिसमें सजदे की आयतें हैं, यानी वो आयतें ऐसी हैं कि अगर उनको पढ़ा जाए या उनको सुना जाए तो इंसान के ऊपर, एक मुसलमान के ऊपर वाजिब होता है कि उन आयतों को सुनने के बाद तुरंत ईश्वर का सजदा करे। अगर कोई इंसान मुजनिब है तो उसके लिए ये हराम है कि सजदे वाली आयतों को पढ़े, सजदे वाली आयतों को नहीं पढ़ सकता है, और जो है अगर पढ़ा है तो उसने हराम कार्य अंजाम दिया है। तो जैसा कि हमने पिछले मसले में बताया कि मस्जिदों में प्रवेश की बात, तो आम मस्जिदों में इंसान प्रवेश नहीं कर सकता है, यानी ठहर नहीं सकता है, लेकिन इतना कर सकता है कि एक द्वार से दाखिल हो और दूसरे द्वार से निकल जाए। तो यहाँ पर ये मसला था। लेकिन कभी कभी ऐसा होता है कि हम किसी ऑफिस में, किसी इदारे में, किसी जगह पर कार्य करते हैं, अगर वो इस्लामी देश या कोई अगर इस्लामी इदारा है, तो वहाँ पर हमको पता होता है, जैसे बैतुस्सलात, नमाज का स्थान या प्रेयर हाउस, इस तरह की चीज़ें हुआ करती हैं। तो नमाज का स्थान, प्रेयर हाउस, बैतुस्सलात, ये वो चीज़ें हैं जो मस्जिद के आदेश में नहीं आती हैं। मस्जिद के आदेश में नहीं आती हैं, क्या मतलब? यानी जैसे कि मसले में कहा गया था कि इंसान जनाबत की अवस्था में मस्जिद में प्रवेश नहीं कर सकता है, लेकिन ये वो जगहें हैं, ये वो स्थान हैं जहाँ पर इंसान अगर मुजनिब है फिर भी उनमें प्रवेश कर सकता है, उसके लिए ये कार्य हराम नहीं होगा। और जैसे कि हमने आपको बताया कि एक मुजनिब के लिए हराम है कि वो सजदे वाली आयतों को पढ़े, तो हम आपको ये भी बताते चलें कि किन किन सूरों में कौन कौन सी आयतें ऐसी हैं जिनमें सजदा वाजिब है, यानी जैसे ही आयत पढ़ी जाएगी सजदा करना वाजिब होगा। इन्हीं वो यही वो आयतें हैं जिनको पढ़ना एक मुजनिब के लिए हराम है, वो हम आपको यहाँ पर बता रहे हैं। सबसे पहले जो चीज़ है वो सूरह सजदा है। सूरह सजदा की 15वीं आयत जो है वो आयत आयत सजदा है, यानी अगर कोई इंसान इस आयत को पढ़ता है या इस आयत को सुनता है तो उसके ऊपर वाजिब हो जाता है कि उसके बाद सजदे को अंजाम दे। दूसरा सूरा जो होता है सूरह फुस्सिलत है। फुस्सिलत की 37वीं आयत, ये भी आयत सजदा है, इसको पढ़ने या सुनने के ऊपर सजदा वाजिब होता है। उसके बाद दो सूरे, सूरह नज्म और सूरह अलक, ये वो सूरे हैं जिनकी अंतिम आयत, दोनों सूरे की अंतिम आयत आयत सजदा है, और अगर इंसान इनको सुनता है या इनको पढ़ता है तो उसके ऊपर सजदा वाजिब होता है। और यही वो चारों सूरे हैं और चारों आयतें हैं जो एक मुजनिब के लिए पढ़ना हराम है। तो ये वो चीज़ें थीं जो एक मुजनिब पर क्या चीज़ें हराम होती हैं, वो उनसे संबंधित थीं। अब हम बताते हैं अगर इंसान कोई मुजनिब हो जाता है तो वो क्या करे। अब इंसान के जीवन में ही होता रहता है, अगर कोई इंसान मुजनिब हो गया तो उसके लिए क्या करे, उसका राय हल शरीयत ने यह बयान किया है कि अगर कोई इंसान मुजनिब हो जाता है तो उसके ऊपर वाजिब है कि गुस्ले जनाबत अंजाम दे। अब गुस्ले जनाबत कैसे किया जाए, इसके भी शरीयत ने दो रास्ते बयान किए हैं। कहा गुस्ले जनाबत दो प्रकार का हुआ करता है, जैसे कि हमने वज़ू की बहस नहीं बताया था आपने, कि वज़ू दो प्रकार का होता है, वज़ू या इर्तमासी होता है या तरतीबी होता है। इसी प्रकार गुस्ल भी दो प्रकार का होता है, या गुस्ल तरतीबी होता है या गुस्ल इर्तमासी होता है। गुस्ल तरतीबी किसे कहते हैं? गुस्ल तरतीबी ये है कि इंसान पहले नियत करे, नियत करने के बाद अपने सर और गर्दन को धुल ले। नियत करने के बाद गुस्ल जनाबत करता हूँ ग़ुर्बत ए अल्लाह, उसके बाद सर और गर्दन को धोए, उसके बाद दाहिने भाग को, अपने शरीर के दाहिने भाग को धोए, उसके बाद अपने शरीर के बाएं हाथ भाग को धोए। इस प्रकार अगर इंसान अंजाम देता है तो उसका गुस्ल गुस्ल तरतीबी है और गुस्ल सही है। और दूसरा गुस्ल है गुस्ल इर्तमासी। गुस्ल इर्तमासी किसे कहते हैं? गुस्ल इर्तमासी इस चीज़ को कहते हैं कि इंसान नियत करे, नियत करने के बाद एक साथ पानी के अंदर डुबकी लगा ले। मसलन किसी स्विमिंग पूल के पास था या तालाब के पास था या नदी या नहर के किनारे था, उसने जनाबत की नियत की और जनाबत नियत करने के बाद फ़ौरन डुबकी लगा ली, तो ये एक तरीका हुआ गुस्ल इर्तमासी करने का। दूसरा तरीका ये है कि इंसान नियत करने के बाद ख़ुद डुबकी नहीं लगा रहा है बल्कि पहले से ही पानी के अंदर था, पानी के अंदर था, पानी के अंदर जाने के बाद उसने, पानी के अंदर पहले से था, पानी के अंदर रहते हुए उसने नियत की और नियत करने के बाद अपने पूरे शरीर को पानी के अंदर डुबो दिया। अगर इंसान इस प्रकार करता है कि अपने शरीर के पूरे शरीर को नियत करने के बाद पानी में डुबो देता है तो उसका गुस्ल गुस्ल इर्तमासी कहलाया जाएगा और ये गुस्ल सही होगा। एक और तरीका ये है कि इंसान पानी के अंदर था पहले से और उसने नियत की, नियत करने के बाद धीरे 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 पानी के अंदर अपनी डुबकी लगा ली, तो ये भी एक गुस्ल इर्तमासी करने का तरीका है। और ये भी अगर इस प्रकार भी इंसान गुस्ल इर्तमासी करता है तो उसका गुस्ल सही होगा। और इसी में हमने आपको बताया गुस्ल इर्तमासी इस गुस्ल तरतीबी या गुस्ल इर्तमासी इस तरीके से किया जाता है। और जैसा कि हमने आपको वज़ू वाली बहस में बताया था कि वज़ू की बहस में शर्त यह थी कि मसलन पानी, जिस पानी से वज़ू किया जा रहा है, पानी मुबाह हो, पानी नजिस ना हो, मुजाफ ना हो, ये इस प्रकार की और बहुत सी चीज़ें जिसको अगर आप विस्तृत रूप से जानना चाहते हैं तो हमारी वज़ू वाली बहस को आप देखिए। हर पानी के लिए हर वो शर्त जो वज़ू में थी वही शर्त गुस्ल में भी होगी, यानी अगर गुस्ल का पानी मुबाह नहीं था, किसी से छीना झपटा, चोरी किया हुआ या इस प्रकार का था तो उसका गुस्ल उस पानी से सही नहीं होगा, या वो पानी मुजाफ था, मतलब शरबत था या किसी चीज़ का जूस था, इस प्रकार का अगर पानी है तब भी उसका गुस्ल उस पानी से सही नहीं होगा। बल्कि आवश्यक ये है, ज़रूरी ये है, अनिवार्य ये है कि इंसान जिस पानी से गुस्ल कर रहा है वो पानी मुतलक हो, शुद्ध हो और उसको पानी कहा जाता हो। और इसी में एक बात और भी आती है कि कभी कभी ऐसा भी होता है कि इंसान के ऊपर एक ही समय में कई गुस्ल वाजिब हो जाया करते हैं। जैसे कि इंसान मुजनिब था, जनाबत की हालत में था कि किसी की डेथ हो गई, किसी की मृत्यु हो गई और वो जाता है उस मैयत को ठंडा होने के बाद छू लेता है, तब उसके ऊपर गुस्ल मसह मैयत भी वाजिब हो गई। या उसने फ़र्ज़ कीजिए पहले से नियत कर रखी थी, कसम खा रखी थी या नज़र कर रखी थी कि जैसे शनिवार के दिन या शुक्रवार के दिन गुस्ल करेगा, तो ये शुक्रवार के दिन वो मुजनिब भी हो गया, उसके ऊपर मसह मैयत का गुस्ल भी वाजिब हो गया और शुक्रवार का दिन था लिहाजा इसलिए उसके ऊपर नज़र और कसम का गुस्ल भी वाजिब था, तो ये तीन चार गुस्ल एक साथ वाजिब हो गए। तो क्या इंसान के लिए आवश्यक ये है, यहाँ पर प्रश्न ये उठता है, क्या इंसान के लिए आवश्यक ये है कि हर गुस्ल के लिए अलग अलग नियत करे और अलग अलग गुस्ल अंजाम दे? यानी पहले जनाबत की नियत करे, गुस्ल करे तरतीबी या इर्तमासी, उसके बाद कसम की नियत करे, गुस्ल करे, उसके बाद मसह मैयत की नियत करे, गुस्ल करे? नहीं, यहाँ पर फुकहा ये कहते हैं, इस बात की फुकहा ने इजाज़त दी है कि अगर किसी इंसान के ऊपर एक समय में कई गुस्ल वाजिब होते हैं तो वो एक साथ कई गुस्ल की नियत करके केवल एक गुस्ल में तमाम गुस्लों को निपटा सकता है। इसके बाद भी कुछ मसले हैं गुस्ल से संबंधित और उसके बारे में और हम आगे बातचीत करेंगे। तब तक के लिए खुदा हाफिज़, वस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू।